शांति। 13-6 73 की अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली। रूहानी योद्धा सर्व बंधन मुक्त त्रिकालदर्शी सर्वशक्तिवान विश्व कल्याणकारी श्रेष्ठ कर्म सिखाने वाले और श्रेष्ठ जीवन वाले बाबा बोले। अपने को रूहानी सेना के महारथी समझते हो? सेना के महारथी किसको कहा जाता है? उनके लक्षण क्या होते हैं? महारथी अर्थात इस रथ पर सवार अपने को रथी समझे। मुख्य बात कि अपने को रथी समझकर इस रथ को चलाने वाले अपने को अनुभव करते हो। अगर युद्ध के मैदान में कोई महारथी अपने रथ अर्थात सवारी के वश हो जाए तो क्या वह महारथी विजयी बन सकता है या और ही अपनी सेना के विजयी रूप बनने की बजाय विघ्न रूप बन जाएगा, हलचल मचाने के निमित्त बन जाएगा? तो जो भी यहां इस रूहानी सेना के योद्धा हो, क्या वही इस रथ के रथी बने हो? जैसे योद्धे सर्व व्यक्तियों सर्व वैभवों का किनारा कर युद्ध और विजय इन दो बातों को सिर्फ बुद्धि में रखते हुए अपने लक्ष्य को पूर्ण करने में लगे हुए होते हैं, वैसे ही अपने आप से पूछो कि इन दो बातों का लक्ष्य है या और भी कई बातें स्मृति में रहती है। ऐसे योद्धे बने हो, कहीं भी रहो लेकिन सदैव यह स्मृति रहे कि हम युद्ध के मैदान पर उपस्थित हुए योद्धे हैं। योद्धे कभी भी आराम पसंद नहीं होते हैं। योद्धे कभी भी आलस्य और अलबेलेपन की स्थिति में नहीं रहते। योद्धे कभी भी शस्त्रों के बिना नहीं रहते, सदैव शस्त्रधारी होते हैं। योद्धे कभी भी भय के वशीभूत नहीं होते, निर्भय होते हैं। योद्धे कभी भी सिवाय युद्ध के और कोई बातें बुद्धि में नहीं रखते, सदैव योद्धेपन की वृत्ति और विजयी बनने की स्मृति में रहते हैं। क्या हम सभी भी एक दूसरे के साथ विजयी रहते हैं? इस दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं। ऐसे ही रूहानी योद्धों की सदैव दृष्टि में यह रहता है कि हम सभी एक दूसरे के साथ महावीर है, विजयी है। हम हर सेकंड हर कदम में युद्ध के मैदान पर उपस्थित है। सिर्फ एक ही लगन विजयी बनने की रहती है। सर्व संबंध व सर्व प्रकृति के साधनों से अपनी बुद्धि को डिटैच कर दिया है, किनारा कर लिया है या युद्ध के मैदान में हो, लेकिन बुद्धि की तारे, संबंध व कोई भी प्रकृति के साधनों में लगी हुई है। अपने को संपूर्ण स्वतंत्र समझते हो या कोई बात में परतंत्र भी हो, संपूर्ण स्वतंत्र अर्थात जब चाहो इस देह का आधार लो, जब चाहो इस देह के भान से ऐसे न्यारे हो जाओ जो जरा भी यह देह अपनी तरफ खींच न सके। ऐसे अपनी देह के भान अर्थात देह के लगाव से स्वतंत्र, अपने कोई भी पुराने स्वभाव से भी स्वतंत्र, स्वभाव के भी बंधायमान न हो, अपने संस्कारों से भी स्वतंत्र, अपने सर्वलौकिक संपर्क व अलौकिक परिवार के संपर्क के बंधनों से भी स्वतंत्र, ऐसे स्वतंत्र बने हो। ऐसे को कहा जाता है संपूर्ण स्वतंत्र। ऐसी स्टेज पर पहुंचे हो व अभी तक एक छोटी सी कर्मेंद्रियां भी अपने बंधन में बांध लेती है। अगर छोटी सी चींटी शेर को अथवा महारथी को हैरान कर दे तो ऐसे महारथी व शेर को क्या कहेंगे? शेर कहेंगे एक व्यर्थ संकल्प मास्टर सर्वशक्तिवान को हैरान कर दे, या एक पुराने 84 जन्मों का जड़ जड़ीभूत संस्कार मास्टर सर्वशक्तिवान महावीर विघ्न विनाशक त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी को परेशान कर ले, पुरुषार्थ में कमजोर बना दे, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान को क्या कहेंगे? जिस समय इस स्थिति में होते हो उस समय अपने ऊपर आश्चर्य नहीं लगता? यह शब्द निकलना कि मुझे व्यर्थ संकल्प आते हैं व पुराने संस्कार व स्वभाव अपने वशीभूत बना लेते हैं व बाप की याद का अनुभव नहीं है, बाप द्वारा कोई प्राप्ति नहीं है, वह छोटे से विघ्न से घबरा जाते हैं, निरंतर अति इंद्रिय सुख व हर्ष नहीं रहता, खुशी का अनुभव नहीं होता, क्या वह बोल ब्राह्मण कुलभूषण के है? ऐसे ब्राह्मणों को कौन से ब्राह्मण कहेंगे? नामधारी ब्राह्मण अगर सच्चे ब्राह्मण कहलाते और यह बोलते तो द्वापर युगी ब्राह्मणों और ऐसे कहलाने वाले ब्राह्मणों में क्या अंतर है? वर्तमान समय ब्राह्मण बनने वाली आत्माएं अपने आप को देखे कि क्या ब्राह्मणपन का पहला लक्षण अपने जीवन में लाया है? ब्राह्मणपन का पहला लक्षण कौन सा है? और संग तोड़, एक संग जोड़। अगर अपनी कर्मेंद्रियों की तरफ भी जोड़ है तो क्या यह ब्राह्मणों का पहला लक्षण है? जब पहले पहले प्रतिज्ञा व पहला पहला मर जीवा जन्म का बोल ब्राह्मणों का यही है कि एक बाप दूसरा न कोई, यही पहली प्रतिज्ञा है अथवा पहला लक्षण है। तो पहले इस लक्षण व प्रतिज्ञा को व पहले बोल को निभाया है या एक कहते हुए भी अनेकों तरफ जुटा हुआ है? तो क्या ऐसा नामधारी ब्राह्मण विजयी कहलाएगा? ब्राह्मणों के लिए इतने बड़े विश्व के अंदर अपना ही छोटा सा संसार है। ऐसे छोटे से संसार में हर कार्य करते ऐसे ब्राह्मण विश्व के जिन भी आत्माओं को देखते हैं, उनको सिर्फ एक कल्याण की ही भावना से देखते हैं। संबंध और लगाव की भावना से नहीं, लेकिन सिर्फ ईश्वरीय सेवा के भाव से। पांच तत्वों को देखते हुए, प्रकृति को देखते हुए, प्रकृति के वश नहीं होंगे, लेकिन प्रकृति को भी सत्व प्रधान बनाने के कर्तव्य में स्थित होंगे। जो स्वयं प्रकृति को परिवर्तन करने वाले हैं, क्या वह स्वयं प्रकृति के वश होंगे? जो अभी प्रकृति को वश नहीं कर सकते, वह भविष्य में सत्व प्रधान प्रकृति के सुख को नहीं पा सकते। तो प्रकृति के वश तो नहीं होते हो? यह तो ऐसा होगा जैसे कोई डॉक्टर रोगी को बचाने जाए लेकिन स्वयं रोगी बन जाए। कर्तव्य है प्रकृति को परिवर्तन करने का और उसके बजाय प्रकृति के वश हो जाए, तो क्या उनको ब्राह्मण कहेंगे? ब्राह्मण तो सभी बने हो ना। कोई कहेगा कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं। ब्राह्मण बनना अर्थात ऐसे लक्षण धारण करना। तो ऐसे लक्षणधारी हो या नामधारी हो, यह अपने आप से पूछेंगे। ब्राह्मण जन्म की विशेषता क्या है जो और कोई जन्म में नहीं होती? ब्राह्मण जन्म की विशेषता यह है कि अन्य सर्व जन्म आत्माओं द्वारा आत्माओं के होते हैं, लेकिन एक ही यह ब्राह्मण जन्म है जो परमपिता परमात्मा द्वारा डायरेक्ट जन्म होता है। देवता जन्म भी श्रेष्ठ आत्मा द्वारा ही होता है, परमात्मा द्वारा नहीं। तो ब्राह्मण जन्म की विशेषता जो सारे कल्प के अन्य कोई जन्म में नहीं है। ऐसी विशेषता संपन्न जन्म है, तो उन आत्माओं की भी विशेषता क्या होनी चाहिए? जो बाप के गुण हैं, वही ब्राह्मण आत्माओं के गुण होने चाहिए। वह गुण भी इस ब्राह्मण जन्म के सिवाय और कोई जन्म में नहीं आ सकते। जैसे इस ब्राह्मण जीवन में त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, ज्ञान स्वरूप बनते हो, वैसे और जन्म में बनेंगे क्या? तो जो सिर्फ ब्राह्मण जीवन के गुण है, यह विशेषता है, उसको इस ब्राह्मण जीवन में अनुभव न किया तो फिर कब करेंगे? ब्राह्मण बन और ब्राह्मण जीवन की विशेषता का अनुभव ना किया तो ब्राह्मण बनकर किया क्या? जैसे अन्य आत्माओं को कहते हो कि परमात्मा की संतान होकर और बाप को नहीं जानते हो तो कौड़ी तुल्य हो। आप ऐसे कहते हो ना सभी को? लेकिन कोई हीरे तुल्य जन्म लेकर भी हीरे समान जीवन नहीं बनाते हैं। हीरा हाथ में मिले और उसको पत्थर समझ उसका मूल्य न जाने, ऐसे को क्या कहा जाता है? महान समझदार। दूसरा शब्द तो नहीं बोलना चाहिए, उल्टे रूप के महान समझदार कभी ऐसे तो नहीं बन जाते हो? तो ब्राह्मण जन्म के मूल्य को जानो, साधारण बात नहीं है। बस हम भी ब्राह्मण बन गए, सदैव अपने को चेक करो कि ब्राह्मण जीवन को निभा रहा हूं। अच्छा, ऐसे श्रेष्ठ जन्म, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ जीवन, श्रेष्ठ सेवा में सदा चलने वाले श्रेष्ठ आत्माओं, विश्व कल्याणकारी आत्माओं और सर्व बंधनों से संपूर्ण स्वतंत्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इस वाणी का सार, पहली पॉइंट है, जैसे योद्धे सर्व शक्तियों, सर्व वैभवों से किनारा कर केवल दो बातों को बुद्धि में रखते हैं, युद्ध और विजय, वैसे ही अपने आप से पूछो कि इन दो बातों का लक्ष्य रखा है या और भी कई बातें स्मृति में रहती है। सदैव याद रखो कि हम हर सेकेंड, हर कदम युद्ध के मैदान पर उपस्थित है। दूसरी पॉइंट है, अगर छोटी सी चींटी शेर को अथवा महारथी को हैरान कर दे, तो ऐसे महारथी व शेर को महारथी कहेंगे? क्या इसी प्रकार अगर एक व्यर्थ संकल्प मास्टर सर्वशक्तिवान को हैरान कर दे या पुरुषार्थ में कमजोर बना दे, तो ऐसे को मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। तीस छः त्रहत्तर की अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली। बाबा और बच्चे। राजाओं का राजा बनाने वाले, जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले, राजयोग सिखलाने वाले, निरंतर योगी, सहज योगी और कर्म योगी बनाने वाले सर्वप्रिय बाबा बोले। यह संगठन कौन सा संगठन है या इस रूहानी पहेली को जानते हो, जान गए हो वा जान रहे हो? जान गए हो तो जानने के साथ जो जाना है उसको मानकर चल रहे हो। पहली स्टेज है जानना, दूसरी है मानना और तीसरी है चलना। तो किस स्टेज तक पहुंचे हो? क्या लास्ट स्टेज तक पहुंचे हो? जिन्होंने हाँ की उनसे प्रश्न है कि लास्ट स्टेज अर्थात तीसरी स्टेज क्या एवरलास्टिंग है? तीसरी स्टेज तक पहुंचना तो सहज है और पहुंच भी गए हैं, लेकिन लास्ट स्टेज को अंडरलाइन करके एवरलास्टिंग बनाओ। मैं कौन हूं? यह अमूल्य जीवन अर्थात श्रेष्ठ जीवन के अपने ही भिन्न नाम और रूप को जानते हो ना? मुख्य स्वरूप और मुख्य नाम कौन सा है? जैसे बाप के अनेक नाम अनेक कर्तव्यों के आधार पर गायन करते हो, फिर भी मुख्य नाम तो कहेंगे ना? वैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं के भी अनेक नाम अनेक कर्तव्यों के आधार पर व गुणों के आधार पर बाप द्वारा गाए हुए हैं। उनमें से मुख्य नाम कौन सा है? जब ब्रह्मा मुख द्वारा जन्म लिया तो बाप ने किस नाम से बुलाया? पहले जब तक ब्राह्मण नहीं बने तब तक कोई भी कर्तव्य के निमित्त नहीं बन सकते। पहले ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा के नाते से जन्म लेकर ब्राह्मण बने अर्थात ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां बने। सर नेम ही अपना यह लिखते हो, अपना परिचय किस नाम से देते हो और लोग आपको किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारिया। इस मर जीवा जीवन की पहली पहली छाप यह लगी, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारिया अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मणपन की। पहले जन्म लिया अर्थात ब्राह्मण बने, तो यह पहला नाम ब्राह्मणपन का। वह ब्रह्मा कुमारियों का पड़ा जो कि तीसरी स्टेज तक एवरलास्टिंग है। एवरलास्टिंग अर्थात हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क और सेवा सभी में ब्राह्मण स्टेज के प्रमाण प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहे हो। संकल्प में भी व बोल में भी शुद्रपन का अंश मात्र भी दिखाई न दे। ब्राह्मणों का संकल्प, बोल, संस्कार, स्वभाव और कर्म क्या होता है यह तो पहले भी सुनाया है। क्या उसी प्रमाण एवरलास्टिंग स्टेज है? वह ब्राह्मण रूप में हर कर्म व हर संकल्प ब्रह्मा बाप के समान है। जैसा बाप वैसे बच्चे, जो स्वभाव संस्कार या संकल्प बाप का है क्या वही बच्चों का है? क्या बाप के व्यर्थ संकल्प चलते हैं व कमजोर संकल्प उत्पन्न हो सकते हैं? अगर बाप के ही नहीं हो सकते तो फिर ब्राह्मणों के क्यों? बाप अचल, अटल, अड़ोल स्थिति में सदा स्थित है, तो ब्राह्मणों का व बच्चों का फर्ज क्या है? लायक बच्चे का फर्ज कौन सा होता है? फॉलो फादर का यह अर्थ नहीं कि सिर्फ ईश्वरीय सेवादारी बन गए, लेकिन फॉलो फादर अर्थात हर कदम पर व हर संकल्प में फॉलो फादर। क्या ऐसे फॉलो फादर हो जैसे बाप के ईश्वरीय संस्कार, दिव्य स्वभाव, दिव्य वृत्ति व दिव्य दृष्टि सदा है? क्या वैसे ही वृत्ति, दृष्टि, स्वभाव व संस्कार बने हैं? ऐसे ईश्वरीय सीरत वाली सूरत बनी है? जिस सूरत द्वारा बाप के गुणों और कर्तव्यों की रूपरेखा दिखाई दे, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। जैसे बाप के गुणगान करते हो या चरित्र वर्णन करते हो, क्या वैसे ही अपने में वह सर्वगुण धारण किए हैं? अपने हर कर्म को चरित्र समान बनाया है? हर कर्म याद में स्थित रह करते हो? जो कर्म याद में रहकर करते हैं वह कर्म यादगार बन जाता है। क्या ऐसे यादगार मूरत अर्थात कर्मयोगी बने हो? कर्मयोगी अर्थात हर कर्म योग युक्त, युक्ति युक्त, शक्ति युक्त हो। क्या ऐसे कर्मयोगी बने हो या बैठने वाले योगी बने हो। जब विशेष रूप से योग में बैठते हो उस समय योगी जीवन है, अर्थात योग युक्त है या हर समय योग युक्त है। जो वर्णन में है कर्म योगी, निरंतर योगी और सहज योगी, क्या वही प्रैक्टिकल में है, अर्थात एवरलास्टिंग है? क्या कर्म योगी को कर्म आकर्षित करता है या योगी अपनी योग शक्ति से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराता है? अगर कर्म योगी को कर्म अपनी तरफ आकर्षित कर ले तो क्या ऐसे को योगी कहा जाए? जो कर्म के वश होकर चलने वाले हैं उनको क्या कहते हो? कर्म भोगी कहेंगे ना? जो कर्म के भोग के वश हो जाते हैं, अर्थात कर्म के भोग भोगने में अच्छे व बुरे में कर्म के वशीभूत हो जाते हैं, आप श्रेष्ठ आत्माएं कर्मातीत अर्थात कर्म के अधीन नहीं, कर्मों के परतंत्र नहीं, स्वतंत्र हो कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराते हो। जब कोई भी आप लोगों से पूछते हैं कि क्या सीख रहे हो या क्या सीखने के लिए जाते हो तो क्या उत्तर देते हो? सहज ज्ञान और राजयोग सीखने जा रहे हैं। यह तो पक्का है ना कि यही सीख रहे हो? जब सहज ज्ञान कहते हो तो सहज वस्तु को अपनाना और धारण करना सहज है, तब तो सहज ज्ञान कहते हो ना? तो सदा ज्ञान स्वरूप बन गए हो। जब सहज ज्ञान है तो सदा ज्ञान स्वरूप बनना क्या मुश्किल है? सदा ज्ञान स्वरूप बनना यही ब्राह्मणों का धंधा है। अपने धर्म में स्थित होना नेचुरल चीज होती है ना? इसी प्रकार राज्यों का अर्थ क्या सुनाते हो? सर्वश्रेष्ठ अर्थात सभी योगों का राजा है और इससे राजाई प्राप्त होती है। राजाओं का राजा बनने का योग है। आप सभी राजयोगी हो या राजाई भविष्य में प्राप्त करनी है? अभी संगम युग में भी राजा हो या सिर्फ भविष्य में बनने वाले हो? जो संगम युग में राज्य पद नहीं पा सकते वह भविष्य में क्या पा सकते हैं? तो जैसे सर्वश्रेष्ठ योग कहते हो ऐसा ही सर्वश्रेष्ठ योगी जीवन तो होना चाहिए ना? क्या पहले अपनी कर्मेंद्रियों के राजा बने हो? जो स्वयं के राजा नहीं, वह विश्व के राजा कैसे बनेंगे? क्या स्थूल कर्मेंद्रियों व आत्मा की श्रेष्ठ शक्तियां मन, बुद्धि, संस्कार अपने कंट्रोल में है? अर्थात उन्हों के ऊपर राजा बनकर राज्य करते हो? राजयोगी अर्थात अभी राज्य चलाने वाले बनते हो? राज्य करने के संस्कार व शक्ति अभी से धारण करते हो? भविष्य 21 जन्म में राज्य करने की धारणा प्रैक्टिकल रूप में अभी आती है। सहज ज्ञान और राजयोग तीसरी स्टेज तक लाया है। संकल्प को ऑर्डर करो स्टॉप, तो स्टॉप कर सकते हो। बुद्धि को डायरेक्शन दो कि शुद्ध संकल्प व अव्यक्त स्थिति व बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, तो क्या स्थित कर सकते हो? ऐसे राजा बने हो? ऐसे राजयोगी जो है उनको कहा जाता है फॉलो फादर। जैसे राजा के पास अपने सहयोगी होते हैं, जिस द्वारा जिस समय जो कर्तव्य कराना चाहे वह करा सकता है, वैसे ही यह संगमयुगी विशेष शक्तियां यही आपके संयोगी है। तो जैसे राजा कोई भी सहयोगी को ऑर्डर करता है कि यह कार्य इतने समय में संपन्न करना है, वैसे ही अपनी सर्व शक्तियों द्वारा आप भी हर कार्य को सहज ही संपन्न करते हो या ऑर्डर ही करते हो। सामना करने की शक्ति आए तो क्या किनारा कर देते हैं? सहज योगी अर्थात सर्व शक्तियां क्या आपके पूर्ण रूप से सहयोगी है? जब चाहो जिस द्वारा चाहो क्या कार्य करा सकते हो? ऐसे राजा हो जैसे पुराने राजाओं के दरबार में 8 या 9 रत्न प्रसिद्ध होते थे, अर्थात सदा सहयोगी होते थे। ऐसे ही आपकी 8 शक्तियां सदा सहयोगी है। इससे ही अपने भविष्य प्रलब्ध को जान सकते हो। यह है दर्पण जिसमें अपनी सूरत और सीरत देखने से मालूम पड़ सकता है। 6 मास जो दिए है वह विनाश की तारीख नहीं दी है, लेकिन हर एक संगमयुगी राजा अपने राज्य कारोबार अर्थात सदा सहयोगी शक्तियों को एवर रेडी बनाकर तैयार कर सके, उसके लिए यह समय दिया है। क्योंकि अब से अगर राज्य कारोबार संभालने के संस्कार नहीं भरेंगे तो भविष्य में भी बहुत समय के लिए राजा बन राज्य नहीं कर सकेंगे। छह मास का अर्थ समझा? अपने हर संयोगी को सामने देखो और अपने संकल्पों को स्टॉप करके देखो। अपनी बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण चलाकर देखो। इस रिहर्सल के लिए छह मास दिए हैं। समझा? अच्छा, सदा सहज ज्ञान स्वरूप, सदा राजयोगी, निरंतर योगी, सहज योगी, सर्व शक्तियों को अपना संयोगी बनाने वाले, बाप समान संकल्प, संस्कार और कर्म करने वाले, ऐसे संगम योगी सर्व राजाओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।